हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही जितनी तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज दौड़कर वो घर से बाहर निकली। तब तक दरवाजे के पास रूहान भी पहुंच चुका था। वो बस गिरने ही वाला था कि अचानक अनाही ने उसे आगे से संभालते हुए कहा, रूहान जी, आप अकेले क्यों आए हैं? अगर आपने इतनी पी रखी थी तो आपको अपने किसी दोस्त के साथ आना चाहिए था। आपने ड्रिंक करके ड्राइव किया है? अनाही की आवाज में गुस्सा और थरथराहट दोनों इमोशन एक साथ नजर आ रहे थे। रूहान ने अपनी नशीली आंखों को खोलकर अनाही का चेहरा करीब से देखते हुए कहा, मैडम जी, आते ही लेक्चरबाजी शुरू कर दी, थोड़ा सांस तो लेने दो बंदे को। अनाही ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे संभालते हुए सीढ़ियों के जरिए थर्ड फ्लोर तक ले गई। उन्हें रास्ते में करीब 10 मिनट लग गए थे, जिसमें रूहान 10 बार गिरते गिरते बचा था। आखिरकार अनाही ने उसे कमरे में लाकर बेड पर बैठा दिया और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, आपका वजन कितना ज्यादा है, मैं तो इतनी देर में ही थक गई। बाहर की कम लाइटिंग में अनाही को रूहान का चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन अब अंदर आने के बाद कमरे की लाइट में वो रूहान को पूरी तरीके से देख पा रही थी। रूहान के चेहरे पर लगी खरोंच, चोट और उसके सीने पर से फटी शर्ट को देखकर अनाही की आंखें बड़ी हो गईं। उसने घबराहट और हल्के कन्फ्यूजन में कहा, आप किसी से लड़ के आए हैं? रूहान ने अपनी फटी शर्ट को देखा और फिर अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी मैडम जी, मैं गलती से किसी से लड़ लिया। वैसे आप सोई नहीं अभी तक? रूहान हर शब्द को लड़खड़ाती आवाज में बोल रहा था। अनाही को उसके अंदर से शराब की बहुत तेज गंध आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो रूहान के करीब जाकर उसकी चोटों को ध्यान से देखती है और फिर फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते हुए खुद में बड़बड़ाकर बोलती है, किसी की नई नई शादी हो और उसका पति दूसरी ही रात जल्दी घर न आए तो उस पत्नी को नींद कैसे आ सकती है? रूहान ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, आप क्या कहना चाहती हैं कि आप मेरा इंतजार कर रही थीं? रियली, आज तक मेरा इंतजार किसी ने नहीं किया है शिवाय मेरी शुगर बेबी के, पर वो तो अब तक सो गई होगी। बिल्ली का नाम सुनकर अनाही ने फर्स्ट एड बॉक्स अपने हाथ में कसते हुए कहा, उसे लेने बटलर आया था, शायद उसे नहलाने और खाना खिलाने के लिए, पर यहाँ मेरी मौजूदगी में कोई ऐसे कमरे के अंदर आए मुझे पसंद नहीं है। इतना बोलकर अनाही रूहान के सामने बैठ गई। रूहान ने गौर से अनाही को देखा, वो बेहद खूबसूरत थी। रूहान का चेहरा काफी हद तक ब्लैंक हो चुका था, जैसे उसके पास बोलने के लिए शब्द ही ना बचे हों, लेकिन अपनी शुगर का जिक्र हुआ था तो उसे चुप रहना सही नहीं लगा। उसने जल्दी से कहा, मेरी शुगर बिल्कुल प्रिंसेस है, तो उसको प्रिंस ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर आप उसे नहला सकती हैं, उसकी पॉटी साफ कर सकती हैं, तो मैं बटलर को मना कर दूंगा, आप उसका ख्याल रख लेना। सुनकर अनाही ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बिल्लियां पालने का, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। इतना बोलकर अनाही ने रूहान के चेहरे की चोटों पर पानी में भिगोकर रुई लगाते हुए उन्हें साफ किया, जिससे रूहान के होठों से एक दर्द भरी की निकल गई। अनाही ने अपने होठों को गोल करके धीरे धीरे फूंक मारते हुए उसके जख्मों को साफ किया और फिर ऑइंटमेंट हाथ में लेकर कहा, ज्यादा दर्द हो तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता ही ऑइंटमेंट लगाऊं ताकि आपको दर्द ना हो। इतना बोलकर अनाही ने अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी ऑइंटमेंट लगाकर उसके गाल पर लगानी शुरू की। वहीं रूहान, जो बारीकी से अनाही के चेहरे को देख रहा था, उसकी भूरी आंखें, लंबी पलकें, गुलाबी होंठ और गाल पर बना एक दिल, अनाही की घूमती पुतलियां रूहान को बेहद अट्रैक्टिव लग रही थीं और उसके हाथ मचल रहे थे अनाही के गाल पर बने उस स्याह तिल को छूने के लिए। रूहान ने अपने निचले होंठ को काटते हुए अपना हाथ उठाया और फिर अनाही के गाल पर धीरे से अपनी उंगलियां फेरते हुए उस तिल को छूकर बोला, ये तिल बहुत खूबसूरत है मैडम जी। अनाही ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रूहान के छूने से उसकी बॉडी जरूर रिएक्ट कर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसके माथे पर भी हल्की पसीने की बूंदें आ गई थी, लेकिन फिर भी वो रूहान की चोटों पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। करीब 30 मिनट में उसने रूहान के चेहरे पर सब जगह ऑइंटमेंट लगा दी थी। उसके बाद उसने रूहान की शर्ट को देखते हुए कहा, आपको चेंज कर लेना चाहिए। रूहान ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, क्या आप मुझे इसके लिए लेक्चर नहीं सुनाओगी कि मैं ड्रिंक करता हूँ? अनाही ने कुछ सोचकर गहरी सांस ली और फिर ना में गर्दन हिला दिया। उसके बाद वो उस फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर उठी और उसे वापस ड्रॉवर में रखते हुए अपने कान के झुमके निकालकर मिरर के सामने रखते हुए बोली, बहुत रात हो गई है, आप फ्रेश हो जाइए और मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रुहान ने ऊपर से नीचे तक अनाही को देखते हुए कहा, आपको पता है मैं ड्रग्स भी लेता हूँ, ड्रिंक भी करता हूँ, लड़कियों के साथ डांस करता हूँ, मुझे लोग कैरेक्टरलेस समझते हैं, क्या आपको चलेगा सब कुछ? शायद रुहान अनाही को हर वो वजह देना चाहता था जिसकी वजह से अनाही उससे नफरत कर सकती थी, लेकिन अनाही ने बड़े ही आराम से उसकी इस बात का भी जवाब दिया। कोई बात नहीं है रुहान जी, सबकी लाइफ में अपनी अपनी खामियां होती हैं, अगर हम उनको लेकर बैठ जाएंगे तो जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप ज्यादा बातें मत कीजिए और फ्रेश हो जाइए, मैं बस 10 मिनट में वापस आती हूँ। इतना बोलकर अनाही तेज कदमों से चलती हुई वहां से बाहर आ गई और रुहान बस उसे देखता रह गया। उसके जाते ही रुहान धम से बेड पर लेट गया और आंखें बंद करके अनाही के चेहरे को वापस याद करने लगा। उसे बार बार अनाही की वो गरम सांसें, उसके हिलते होंठ, घूमती पुतलियां और बार बार उसके गालों पर आते वो सुनहरे बाल याद आ रहे थे। रुहान ने बेडशीट को अपनी दोनों मुट्ठियों में भरते हुए कहा, मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ मैडम जी, आपको मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी, पर अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मैं चाहता हूँ आप एक अच्छी जिंदगी जियो, वो भी अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ। पता नहीं क्यों रुहान उनके साथ ज्यादा बुरा करते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आपको देखकर लगता है आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, आपको मेरे जैसा गंदा पति नहीं मिलना चाहिए था, मैं आपके साथ ये इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। मैं बाकी किसी से तो इस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, पर ताई जी जरूर मेरी बात सुनेंगी, उनके अलावा मुझे इस घर में कोई नहीं समझता है, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। रुहान खुद में बड़बड़ाते हुए नींद के आगोश में जा चुका था, उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। अनाही जब वापस आई और रुहान को इस हालत में देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने अपने हाथ में पकड़ी खाने की प्लेट को टेबल पर रखा और रुहान के पास जाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुहान जी आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए। रुहान नींद में ही बड़बड़ाते हुए अनाही से अपना हाथ छुड़ा लेता है और करवट बदलने लगता है। उसके ऐसा करते ही अनाही जल्दी से उसका कंधा पकड़ते हुए कहती, रुहान जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बहुत ज्यादा केयरलेस है, रात को ऐसे बिना खाना खाए मैं आपको सोने नहीं दूंगी। इतना बोलकर अनाही रुहान की दूसरी तरफ आई और इस बार उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, रुहान जी प्लीज उठा जाइए ना, खाना खा लीजिए। रुहान ने अपनी नींद भरी आंखों से अनाही को देखा और फिर गुस्से से कहा, आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं, मुझे नहीं खाना है, आप प्लीज जाइए यहाँ से, बालकनी में जाकर सो जाइए आराम से।
अनाही ने एक पल के लिए जिद्दी रुहान को देखा और फिर खाने की प्लेट लेकर बेड पर बैठकर एक निवाला बनाते हुए रुहान के होठों के पास ले जाकर बोली, प्लीज कम से कम एक चपाती खा लीजिए, मैं आपको उठने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुंह खोलने जितना कष्ट तो आप कर ही सकते हैं।